और उसने कुबेर का पत्नी है और एक बार उन्होंने आग लगी धन का गऊ के बच्चों को गऊ को और कन्याओं को जलाने के लिए संत का भेजा हुआ है चल आग लगा की बनने और धन का आग जलने चाहिए। उन लोगों ने कृष्ण को पुकार श्री छठ महा उपस्थित हो गए आग बंद करो आग बंद किया और पानी तरफ है उसी का पान जैसे आपका मान मान कर लिया एक देशमान को अमृत के समान ठंडा हो गया तो कृष्ण को कहा पान करे पान करेगा अपराध चिंता करी अपराधिक मानस को नहीं रह सकता मैं जानता हूं अर्जुन को भूख नहीं है प्यास नहीं है समुद्र का ज्ञान में समर्थ है अण अण में है परमाणु में है और करने का आदित्य परमाणु की बात है उस प्रभु को मैं क्या कर सकता हूँ बाहर नहीं लगेगा चलेगा किंतु हमारे पिता का प्रसाद है वैष्णव का प्रसाद है यदि किसी को कोई मारे तो जब होता है क्या होगा पहले नहीं मर रहे सदा पहले नहीं मर रहे अब तो दवा धन के माना है इनके शरीर में किसी वस्तु में प्रवेश किया था मैं ऐसा नहीं होता असु ने प्रवेश किया था ये तो कृष्ण के ऊपर है भले ही अपराध करी हो नरक नहीं जा रही है कोई उनको ऐसे बांध के कोई भक्त मारेगा किंतु उन्होंने मारा तो इसलिए भक्त तो है किंतु कैसे भक्त है ज्ञान भक्त है द्रौपदी का भक्त कृष्ण को देखते हैं ज्ञानी है इनको दुख प्यार के लिए कोई सेवा की जरूरत नहीं है प्रभु हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें भक्ति है इसलिए भक्तों में से होने वाली सेवा नहीं है
द्रौपदी को वर दिया द्रौपदी को जो वर दिया था
हाँ ये बात और ये भीषण काम नहीं कहते भक्त है इसको भी सुन लीजिए एक समय की बात है दुर्योधन ने कहा ओ पितामह जी आप लड़ते हैं हमारी तरफ से और पांडवों का पक्ष लेकर के उनकी विजय चाहिए आज तुम बात सोच रहे हो यदि होता तो मैं तुम्हारे तरफ से करता तो आप हमारी कभी विजय नहीं चाहते मैं ये देखता हूं उसको प्रसन्न रहते हमारे मन में प्रसन्न नहीं है जो लड़ रहे हैं उन्हीं के तरफ हमारे तरफ से कि जो विजय चाहते हैं उनके मैं कभी ऐसी बात मत मैं ये तुम ज्यादा चाहते हो कि बात पूछी अच्छा जैसे आगे पास मैं रात में भगवान का अध्ययन करता हूँ और उस समय तुम अपनी पत्नी को क्या नाम था
भानुमती
भानुमती को अपनी पत्नी को लेकर के आना और उस समय उसको तुम्हारा सुभाग अचल रहे अचल रहे मैंने बुद्ध में पराजित न हो तो मान न सके इसे तुम्हारा जो हाथ अचल रहे मैं उसको बांधे दूंगा और उनकी विजय हो जाएगी ठीक है आज ही आज आज ही रात जैसे जब मैं आज ही रात जब हुई तो अपनी पत्नी को कहा कि हमारे साथ में तुमको चलना है अपनी सदस्यता होंगे तुम जा सकते सब्जियों जाना तुमको वो पढ़ देंगे हर लोग सुहा मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। एक दिन संध्या जहां युद्ध समाप्त हुआ बहुत मछला धारणी करना आरंभ हो गया पानी बंद ही ना हो चारों तरफ में पानी पानी ही पानी हो गया और जाए का समय बीता है ठंडी हवा चल रही है उसने दुर्योधन ने कहा मेरे सब तो बैठा ही बचती है अभी पानी खोल सका तो पानी में पहुंच जाए अच्छे सब से है उसको आज आराम करो कल ले तो अगर उसने कहा सभी उसको कभी जाते थे द्रौपदी ने क्या कहते हैं सखी कहते हैं सखी अभी तुरंत तैयार हो जाओ हम मेरे कहा से चलना है कहा चलना है भीषण काम आदमी के साथ एक जरूरत है भूखे निकाल सके जाए और जब लोग उनको कोई बात कह रहे तब भूख निकालना हम उसको प्रणाम करना पहले नहीं भूखे के साथ उस घर का काल में सक्री लेकर के और अर्जुन कारक लेकर के उत्तम को बैठा दिया साथ ही कर्तव्य गए और फिर वहां पर जब उसकी स्थिति में पहुंचे उसका जागरूकता करके जाओ राजा पर खड़े हैं, राजा पर खड़े हो गए और फिर ने देखा उनको भेज दिया निकाल ली और निकाल करके सीकम सीतामा के शरण में गई। उनके आहत पा करके वो तो ध्यान बन रहे थे, ध्यान से जब ही सुने अरे बेटी तू आ गई तुम अटल सौभाग्य रखती रहो, तुम्हारा सौभाग्य अटल हो। कहते हैं वो मुस्कुराने लगी और उठा लिया और उनके चरण में प्रणाम किया पितामह। तेरे आज की तो बात नहीं, तुम्हारे साथ में जरूर कोई आया है, वो जो छठे वो जरूर आया होगा, वो कहाँ है तो बात तो खड़ा है, सब जल्दी से गया। आपकी जो इच्छा है शरीर प्रतीत नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आपकी जय हो, आपके भक्तों की जय हो। आप जो चाहते थे आपकी प्रॉपर्टी अटल सौभाग्यवती होगी, इसको कोई भी पांडव साहब कहीं भी कोई कुछ स्वीकार नहीं कर जाते रात में कोई नहीं मार सकता। ऐसे आप तो क्यों नहीं रहे थे आंतरिक रूप में जैसे प्रॉपर्टी है, ऐसे भक्त बनने के हमारे सब प्रकार से बात करें गौ
महापुरुष की कृपा से तिलकेश्वर स्वामी ने भक्ति की ऐसी सुंदर परिभाषा दी जो सर्वांग को दी और कहीं भी ये विचार करना है कि इनमें भक्ति है कि नहीं, ये किस कोटि के भक्त हैं, इस श्लोक को उस पर लागू कर दीजिए, देखिए कि वो चीजें इसमें है कि नहीं है, कितने परिमाण में है, तो आप समझ जाएंगे कि ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं। और भक्ति है तो किस कोटि की है, कर्म है कि ज्ञान निष्ठा भक्ति है कि शुद्ध भक्ति है कि रागानुगा भक्ति है कि प्रतिष्ठित भक्ति है कि क्या है भाव विशिष्ट भक्ति है। प्रारंभ से श्रद्धा से लेकर और अंतिम श्रीमती राजा जी के भावों तक वो ये परिभाषा स्पष्ट करती है। हमने भी बताया आप लोगों को महाराज प्रहलाद महाराज और भीष्म भक्ति को भी उनको ज्ञान निष्ठा थे, उनको भगवान समझने से उनके प्रति सेवा नहीं हो पाती, परम ब्रह्म समझने से उनके प्रति वो जो प्रेमयी भक्ति है वो लौकिक अनुभव की भांति जो उनके प्रतिमयी सेवा है वो कभी संभव पर नहीं है। इसीलिए वो लोग समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाते हैं। वे भगवान में भोग प्यार की कल्पना नहीं कर सकते, उनको जो प्यागत है कष्ट की अनुभूति नहीं कर सकते और सेवा की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान की कृपा प्रार्थना के लिए बस इसी में रह जाते हैं, जैसे पढ़ो हमारे ऊपर में कृपा उनका चिंतन समण चिंतन विष्णु संस्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दत्तात्मनिवेदन ये सब तो करते हैं किंतु प्रेम की सेवा नहीं करता। अब आगे हम चलते हैं जिसके लिए आप उन लोगों ने भरत महाराज जी का नाम सुना, ऋषभ देव सबसे बड़े युवावस्था में ही युवावस्था कितनी 50,000 वर्ष की आयु में युवावस्था उन्होंने संसार को संसारिक आसक्तियों को अपने परिवार को सबको मलबत प्रत्याग करो, मलबत मन किया जैसे कच्ची लकड़ी हो खुद दूर से और गोपी से जी का आपका ठंडा और खुद दूर से कच्ची अब निकली तब निकली दर्शन करेंगे संभव है। जब मन निकल जाएगा तो शांत हो जाए। ऐसे ही संसारिक आसक्तियों को, संसार के बंधनों को और संसार के बंधुओं को पिता माता बंधु भाई दूसरी पुत्र परिवार राज्य सबको मन के समान छोड़ दिया है। आए पन्न भजन करने के निरंतर संयम करके भगवान का चिंतन करते यहां तक कि श्रद्धा निष्ठा बुद्धि आसक्ति ये सबको पार कर गए और पार करके अब पहुंचने वाले के भाव अवस्था में रक्षा प्राप्त होने को थी। अनर्थ एकदम संपूर्ण रूप से तो नहीं किंतु हां एक तरह से संपूर्ण रूप से डूब चुके थे, कुछ ग्रस्त हो सकते। भजन करते करते एक दिन एक नदी के किनारे उनकी टूटी थी, टूटू भी घाट टूट थी। वापस चिंतन कर रहे थे, इतने बाद में बड़े जोर से गर्जन की, आंख से भी देखा एक हिरणी इनके पास ही जंगल में चल रही थी नदी के किनारे, बड़ी सुंदर सुंदर घाटे। जब बाघ निकट में आकर के गर्जन किया और उसके ऊपर में कूदने वाला था, आक्रमण करने वाला था, उसी समय वो वहीं से कूद पड़ी और नदी को छलांग लगाई। वो गर्जनी थी, ये छलांग लगाए जोर से तो नदी के बीच में छलांग लगाते समय में उसके गर्भ से बच वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने से वो तो उधर में गिरी उस पार में और चित्त नैनों से नेत्रों से अपने बेटे की तरफ निहार, हमारा बेटा हमारा नदी में गिरा कोई इसकी रक्षा कर सबने ये भावना रखी, चाहे पशु हो पक्षी हो कि प्रसन्न हो गधे ऊपर ऊपर हो, अपने प्राण बड़े प्यारे होते हैं, अपने बच्चों का प्राण अपने से भी अधिक होता है। तो वो ऋषि नैनों से उसके तरफ में हमारे बेटी को कोई रक्षा कर ऋषि ने उसके आंखों को पड़ी, आंखों में आंखें मिली वो ज्ञान दूर करके उन्हीं के तरफ में देखी, अभी तो भजन करता रहेगा या हमारा बच्चा मर जाएगा तब उठेगा। वो देखा जैसे उसका बेटा नदी में डूब रहा उतरा रहा है और डूब रहा है, झट अपनी भजन की झोली रख ली, भगवत चिंतन दूर कर दिया और उसकी रक्षा करने के लिए नदी में उतर गए और उस हिरणी के बच्चे को झोली में उठा लिया। उठा करके बड़े प्यार से अपने आश्रम में लाए तो और उसकी तो रक्षा करना पड़ेगा, मैया तो है नहीं, दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दूध की किसी तरह से मैया इत्यादि के द्वारा उसकी व्यवस्था की और वो दिन दूना रात चौना पढ़ने लग गया, माता के गर्भ में चौकर कहीं उनके सामने लग गया। वो और इसको ही अपनी मैया समझ लिया क्योंकि प्राण की रक्षा है। जब ये आसन पर बैठे अपने सिर से सिंह तो अभी नहीं उठी है ऐसे खुली लाल मुझे कब से आप और खुद करके उनकी गोदी में बैठ गए, ये टहलाने लगते इधर से हरिनाम करते हैं तो हरिनाम थोड़े होता है, हरिनाम करेंगे तो उसकी सिर से नरम गया और जब ये जिला पुल से आने में हो गया है ये कृष्ण सार मिले जहां ये होते हैं यहां पर दिव्य स्थान बन जाता है परम पवित्र हो जाता है। इसके जन्म लेने के यहां हम लोग किताब खो गई, कुछ पचुंदरा भी किताब खो गई और इसी किताब के सामने लगते
थोड़ी देर के बाद कुछ दिन में इतनी आसक्ति बढ़ गई कि वो जहां बैठते माला करने के लिए बस वहीं आ जाता, बस उसके लाश के अंदर रहते, और जब विश्राम करने लगा था उसी की चिंता में रहते भगवान का भजन हो गया बहुत कम, धीरे 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 बस माला तंग हो गई, ध्यान उनका वही हिरण का ध्यान हो गया, और इसी बीच में उनकी मृत्यु आई। जब मृत्यु आई उसने देखा कि मैंने वो मृगियों के साथ में, मृगों के साथ में उनके दल में देखा कि हमारे दल के जो हैं बस उनसे कुत्ता खान कावला बस उनके साथ में निकल करके चला गया। फिर लौटा जी और इधर मृत्यु आई है, हाय किरण कहा गया किसी जानवर ने खा लिया क्या हुआ, लौटा नहीं दिन रात उसी की ही चिंता करते 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 मृत्यु तो आई थी, बस उसी की चिंता करते 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 बस प्राण छोड़ दिया। अंत समय में जिसकी चिंता होती है बस वैसा ही प्रश्न होता है किरण बन जाती है। इसलिए चेता होनी चाहिए कि अंत में भगवत चिंतन छोड़कर के कोई दूसरे की चिंता न हो। इसे एक और भी गंभीर शिक्षा है, वो शिक्षा यह है कि ये यदि हिरण की चिंता करते करते हिरण हो गए और मृत्यु समय में कोई भगवत चिंतन करे, चिंतन करते करते गोपियों की चिंता करे और कृष्ण की चिंता करे, नंद बाबा जो सदा की चिंता के साथ में कृष्ण की चिंता करे, ये लोग किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं, विशेष करके गोपियों का चिंतन करे, ये गोपियां कृष्ण को इस प्रकार से सेवा कर रही हैं, तो मरने पर उसको क्या होगा। यदि वो हिरण मर गए कि ये गोपियां या उनके परिसर क्यों नहीं हो जाएंगे, ये चीज को अच्छी तरह से समझो। इसलिए मत मैंने वही चिंता की है जो सारा जीवन भर तुमने किया, इसलिए क्यों नहीं पहले से अपने को सुधारो भगवत के साथ, तो भगवत का परिकर होकर के चाहिए, इसी को अस्पताल के विचार चिंतन करते हैं। इसी तरह से संत लोग पहले से ही साधन भजन करते हैं, विष्णु का चिंतन न हो, विषय लोगों से मिले नहीं और 24 घंटा वो सनातन यही करते हैं, उनकी नित्य तक समय चिंतन करते हैं, उनके धामों पर छोड़कर के कहीं नहीं जाते, इसलिए भगवान का चिंतन ऐसा करने से दूसरे जन्म में वो हिरण क्यों कर गया है, किस पूर्व जन्म की स्मृति थी, क्योंकि वो रति की अवस्था तक पहुंच गए थे, बहुत उत्तम अवस्था तक पहुंचे थे, भागवत तो हो गए थे, महाभागवत अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ये गड़बड़ी हो गई है। एक और शिक्षा है, वो शिक्षा ये है, भरत महाराज ने बड़ी दया है, बड़ी दया है, इसलिए बच्चे को उठा लिया, किंतु उनके लिए भक्ति के कम होने का नष्ट होने का कारण बन गया, इसको कहते हैं शास्त्री की दया। कपू मारे कहता है कि वो पर्वत आसन का रहेगा, उसमें कोई दोष रहेगा नहीं, भूल रहने पर भी दोष जरूर रहेगा, जो फिर आवागमन के चक्कर में डालते हैं, ये उठा देखो उनकी शास्त्री की दया है, दया तो की किंतु दया करने से भी अंतर प्रति उनकी आसक्ति हो गई और इसका 30 जन्म नष्ट हो गया, भजन तो हो गया दूर से, उतर तो भाग्य था जो कि कुछ उसकी स्थिति पर पहुंच गए थे, इसलिए तीसरे जन्म में उनका कल्याण हो गया। इसलिए शास्त्र की दया की दोष समझ करके तो यदि वो उसको बचा लेते और उन पर आसक्ति उसकी नहीं होती उनकी, और कुछ थोड़ा सा बड़ा मंत्र छोड़ देते जंगल में, वो हिरणियों के दल में मिल जाता जो पहले जैसे पहले मिल जाता तो काम बन जाता कि तो ऐसा किया है, जो कुछ करो भगवान के लिए प्रसन्नता स्वास्थ्य में शुद्ध हो,
those three things. Don't do for yourself, for others. Otherwise, you will have to pay something. You will have to come in the circle of birth and death. You can accept part of many circumstances. If you have to understand that you are not going आज प्रसंग बच्चा में जा रहा था और अस्पताल बना जैसे भी दिया ने अस्पताल बनाया दिल्ली में हमारा भी वहां पर एक ऑपरेशन हुआ हजारों लोगों की चिकित्सा होती है बहुत कम पैसे में करते हैं और शुद्ध रूप से करते हैं भोजन पान भी बड़ी समुचित रहते हैं मान लिया कि जैसे कोई एक आदमी था जगह डकैत डालना उसका काम था उसने हजारों लोगों को बद किया और उनका सब कुछ लूट लिया किंतु अंतिम डकैती में वो खैर हो गया पैर में बंदूक लगी और यहां सरने लग गए और वो गिर गया सड़क पर से किसी ने देखा उसको अस्पताल में ले जाना खराब कर दिया और वो फांसी कर दिया कि यह अच्छा हुआ डॉक्टरों ने मानव सेवा की दृष्टि से या जिस प्रकार से उसकी बड़ी सेवा की हजारों रुपये खर्च करके लाखों रुपये कोई छात्र नहीं उसका बड़ी सेवा हुई और दो तीन दिन महीने में एकदम वो पूरा चलता हो उसको याद था कि किस घर में हमने डकैती डाली और उन लोगों ने हमको मारा इसे फिर पूरा कैंप बनाया और बना करके उसके घर में आक्रमण किया उसका सर्वर को डूब दिया और उसके 40-50 घर वालों को उड़ा दिया सब बारे में और ये जो 50 हत्या किए और पहले का जो है इसका फल किसको भोगना पड़ेगा किसको उसको तो भोगना ही पड़ेगा किंतु जिन लोगों ने अच्छा किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा ही उन डॉक्टरों को भी और जिन्होंने अस्पताल बनाया उनको भी ये सब का पाप लेना पड़ेगा इसलिए कर्म एक ऐसा पाप है इसमें अच्छे और बुरे दोनों जो बनते हैं वो संसार का बंधन होता है जो भलाई की भलाई को भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा और जो बुराई की उसका फल भी भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा इसलिए कर्म मार्ग सबसे खराब घर में रहो कर्म बंद रखो भक्ति करो जो कुछ घर में करो किसके लिए करो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पांडवों जैसा हो कुंती जैसा हो द्रौपदी जैसा हो गोपियों जैसा हो नंद जसोदा जैसे अपने लिए निर्मत करो इसलिए कर्म मार्ग सबसे पूरा है न कर्म मत अच्युत भाव वर्ती न शोभ के ज्ञान अलम निरंजन कुतापना असत्व भद्रम ईश्वरे न अर्पितम कहते हैं कि ये कर्म जो ज्ञान मार्ग है जो कर्म नहीं करते हैं वो भी यदि भगवान को अर्पित नहीं है तो वो ज्ञान की शोभा नहीं होती और कर्म करते समय वर्तमान में जो किया गया चुका है और आगे का ये सत्र है और भक्त है इसका पूरा फल है तो सबसे कर्मों की गति कहां है इसलिए इसके दुख नहीं हो इसे घर में रहो बाहर में रहो व्यक्ति में रहो जहां भी रहो क्या करो भगवत कर्म ना अपने यदि कुछ करना है तो भगवान का ये सेवन है हमारे बेटे या ये संसार के किसको गोली लग गई या कुछ हो गया आसक्त नहीं होकर के ये भगवान का जीव है इसका कल्याण महाप्रसाद की सेवा उनको तो इलाज कराओ किंतु अनासक्त होकर के इसका कल्याण हो इस भावना से यदि करोगे तो तुम इस कर्म मार्ग से बचे होगे जब थोड़ी सी गलती महाराज की हुई इसलिए सबसे बड़ी क्रिया क्या है यदि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की रुचि को भगवान की तरफ में लगा दो सेवा करने के लिए, ये सबसे बड़ी दया है। इस दया में कोई दो, इसलिए दया जब सत्ता करी करो सत्ता अपना जल सत्ता करो। महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि के मनुष्य जन्म है क्या जन्म का प्रथम परी परोपकार ये है। पर माने ये दूसरे का उपकार नहीं है, मत समझो। पर माने क्या है सबसे श्रेष्ठ उपकार क्या है, किसी के चित्त दृष्टि को वस्तु करके समझा बुझा करके भगवान के चरणों में लगा दो, इसी से तुम्हारा कल्याण। बस ये कर्म कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करो। आगे चलते हैं अब अम्बरीश महाराज, ये सब श्रीमद भागवत का उदाहरण दे रहा हूं, ये श्रीमद भागवत का ही पाठ हो रहा है और उसके साथ साथ इस भक्ति का आश्रम में दिखला रहा हूं। ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये कुछ कुछ जो असुविधा है अभाव है इनसे बच करके रहना सावधानी से। दया करो किंतु ऐसी दया मत करो जो आग्रह करो करके संसार में प्रहलाद महाराज की व्याख्या बनो, किंतु ज्ञानी न करके भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है, उसकी सेवा करो। इसी तरह में सबने जो जहां जहां शुरू किया है उन सब त्रुटियों को देखते हुए आगे बढ़ो। अम्बरीश महाराज है तो ये सागर, प्रहलाद महाराज जो है ये ऋषि समाप्त है, वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। भक्त जी संरक्षण अशुद्ध गोस्वामी ये लोग भी बहुत ऊंचा उठे हुए महाभाव है और ये सार्थक पति है, किंतु इन्हें ये विशेषता है जो उन लोगों में नहीं है इनके भगवान को भूख लगती है। इनके भगवान को प्यास लगती है, इनके भगवान को कीर्तन सुनने में बड़ा आनंद आता है। ये इनके भगवान को अपने भक्तों की रखने की कथाएं सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए इस प्रकार के कोटि हैं, इनको श्रीमद् भागवत में महाभाग बताया है। लोग मिलकर कृष्ण महाभाव अम्बरीश किसी भी इनको महाभाग के महाभाग कहते हैं। कहते हैं नंद की महोत्त ब्रह्म श्रीओ जसो द्वारा महाभारत जसोदा बाबा को नंद बाबा को महाभारत ये कृष्ण की सेवा में सबसे महाभारत के काल को कोटि को तो नहीं कहा किंतु उसी कोटि को लक्ष्य करके इनको बदला रहे हैं महाभारत साधारण जो ऋषि महाराज महाभारत और उद्धव जी महाभारत दूसरा मैंने महाभारत तो ये अंतरिक्ष महाभारत मन को लगाया भगवान के चिंतन में कर्म को भगवान की कथा सुनने में और शरीर को भगवान के लिए चरण प्रणाम करने में हाथों को भगवान की सेवा में उनके मंदिर के लाभ में
उसको साफ सुथर तैयार कर दीजिए। भगवान के जन्म लगाया और दीर्घवर्षन होता गया, भगवान का सुनाता कीर्तन कर देंगे।
Thank you.